Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
इसका मतलब क्या हुआ? जो मक्खन व्यक्त नहीं हुआ है, उस मक्खन को आप किस रूप में यहां प्रस्तुत कर रहे हैं? असत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मक्खन का आप निषेध करके प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि आपके पास दही है और मक्खन है। मक्खन है तो फिर क्यों नहीं है कहते हो? तो बोले मक्खन व्यक्त नहीं है, बस इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता हूं। तिल है तो फिर तेल है क्यों नहीं कहते हो? फिर ये क्यों कहते हो कि तेल नहीं है? तो आप यही जवाब दोगे उसको, तिल है लेकिन तेल व्यक्त नहीं है। और क्योंकि व्यक्त नहीं है इसलिए व्यवहार का कारण नहीं बन जाएगा, व्यवहार का कारण नहीं बनता, इसलिए लोक व्यवहार में उस व्यवहार योग्य न होने वाले जो पदार्थ हैं उसके स्वरूपतः अस्तित्व रहने पर भी व्यवहार में उसको नास्तिक के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, नहीं के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात असत के रूप में ही उस कारण रूपा कार्य को, कारण रूपा को, कार्य के कारण रूप को असत रूप से कह दिया जाता है। जैसे गुजराती लोग जब पूरण पूरी खाते हैं तो घी जरूर डालना पड़ता है, घी के साथ ही खाते हैं पूरण पूरी, और यदि घी नहीं तो कम से कम तेल तो खाओ, तेल डालता है। ढोकला खाओ तो तेल के साथ खाओ, पूरण पूरी खाओ तो तेल के घी के साथ खाओ। अब पूरण पूरी घी के साथ खाना है, दही के साथ खाना तो नहीं ना है? दही के साथ तो नहीं खाना है, जबकि बात तो एक ही है। लेकिन व्यक्त हुआ हुआ जो घी है उसी को ही आप कहेंगे घी है और घी के साथ खाओ। हम कहेंगे कि नहीं, हम तो दही के साथ खाएंगे, तो आप कहोगे कि नहीं बाबा, पूरण पूरी दही के साथ नहीं खाया जाता है, दही के साथ तो बाजरा का रोटला खाया जाता है। ले जी, बाजरा के रोटले में घी भी डालते हैं, लेकिन बाजरा का रोटली खाओ तो दही या छाछ तो जरूर खानी चाहिए। मतलब क्या हुआ भाई? बाजरे के रोटली में एक तो घी ऊपर से खूब डालेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे कि छाछ खाना बहुत जरूरी है। इससे अच्छा ये क्यों नहीं कह दो कि दही खाना बहुत जरूरी है? दही में घी भी आ जाता है, छाछ भी आ जाता है, लेकिन वो नहीं, उसका कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा, वो घी प्लस छाछ। क्योंकि पहले घी खा लो, घी खाने के बाद छाछ ले लो, छाछ में जो खट्टास है वह घी के जो स्निग्धता है और घी के जो आंत में गले में जो चिपक जाता है और उसके द्वारा जो गली में इन्फेक्शन होता है वो सब को वो खट्टास क्या करता है, उस दूध मन घी के उस सिग्नल चिकनाई को वह सफाई करता है। तो कहीं भी आपके पेट में आपके गले में वह घी विकार पैदा नहीं करेगा। इसलिए गुजराती लोग खूब खीर खाएंगे और खूब घी डालकर खाना खाएंगे, उसके बाद छाछ पी लेंगे तो बस गला साफ हो जाएगा। उस गला साफ करने के लिए है, और दूसरी बात है कि वो पाचन के लिए है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, दो चीज है कि तेल और घी के जो चिकनाई है, स्निग्धता है, उसको साफ करने का दो साधन है, एक तो खट्टाई और दूसरा मिठाई। तो हम षोडश उपचार पूजा करते हैं, तो षोडश उपचार में घृत स्नान का प्रयोग आता है, घृतम मिमिक्षे घृतमस्य योनि इत्यादि मंत्र पढ़ के, तो शिवलिंग में या भगवत विग्रह में पूरा का पूरा घी लगा देते हैं, और घी लगाने के बाद शुद्ध जल अर्पण करते हैं। फिर घी के बाद का जो विनियोग आता है वह दही, और फिर उसके बाद लास्ट में आता है चीनी, शर्करा, चीनी। तो घी के बाद जो दही है, दही आधे से ज्यादा उस घी के चिकनाई को तो दही साफ, क्योंकि खट्टा है इसलिए वो साफ कर देता है, और उसमें थोड़ा बहुत बचा रहा तो फिर वह चीनी उसको पूरा का पूरा साफ कर देता है, तो उस मूर्ति में वह चिकनाई नहीं रहेगा, वह घी नहीं रहेगा, स्निग्धता नहीं रहे, साफ हो गया। तो या तो ये तीन चीज एक दूसरे के पूरक है, तीन चीज माने स्वीट, साल्ट और सावर, है कि नहीं बोलो। स्वीट माने चीनी, साल्ट माने नमक और सावर माने खट्टाई, है ना। ये तीनों चीज ये चिकनधा चिकनाई का विरोधी है, और इसीलिए जहर का स्वाद कैसा होता है, किसी ने पूछा, जहर का स्वाद, विष का स्वाद कैसे होता है, तो आज तक दुनिया में किसी ने भी जहर का स्वाद ऐसा ही होता है करके पूरा का पूरा स्प्लिंग सहित लिखकर बताया नहीं है, है ना। स्वाद, हाँ, जहर कैसा होता है ये तो बताएंगे, स्वाद टेस्ट कैसा होता है हमने सुना है भाई, बहुत वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा है, कहते हैं कि उसको स्वयं कापी कलम आगे रखकर जहर जिब्बा में लेकर उसके पूरे टेस्ट को अनुभव करके, हाँ ऐसा ही होता है करके फुल स्पिलिंग नहीं लिख पाया है, ऐसा सुना है हमने भाई, पता नहीं तत्व क्या है हम नहीं कह सकते। कहते हैं कई व्यक्तियों ने कोशिश किया तो पहले अक्षर लिखा स्पेलिंग खाली यस लिख दिया है, तो कोई कहते हैं यस का मतलब मैक्सिमम बहुत मात्रा में स्वीट होने के कारण वह मृत्यु का कारण बनता है, है थोड़ा सा शरीर में शुगर बढ़ जाता है तो मृत्यु का कारण होता है, तो वही शुगर को हजार गुना ज्यादा सूक्ष्म बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो वो फिर शरीर को कैसे रहने देगा, है तो वो भी मानते हैं कि अत्यधिक मीठा होने के कारण वह जहर शरीर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मृत्यु हो जाती है। कहते हैं खारा नमक भी, थोड़ा भी ज्यादा नमक हो तो शरीर सहन नहीं कर सकता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है कम करो कम करो, नून कम करो, नमक कम करो। अब उसी नमक को हजारों लाखों गुना सूक्ष्म बनाकर यदि शरीर को दिया जाए तो शरीर कैसे उसको स्वीकार करेगा, कि अत्यधिक नमक भी शरीर स्वीकार नहीं करता इसलिए मृत्यु हो जाती है। तो इसका मतलब बहुत ही खारा है वो जहर। तो किसी ने कहा कि नहीं नहीं अत्यधिक खट्टा है, तो ज्यादा खट्टा भी शरीर सहन नहीं करता है, तो अत्यधिक खट्टा हो तो भी शरीर सहन नहीं करेगा। तो कहते हैं यस स्पिलिंग लिख दिया गया पहला, उसका अर्थ क्या हुआ, तो बोले किसी ने अर्थ लगाया अत्यधिक मीठा है, किसी ने अर्थ किया अत्यधिक खट्टा है, किसी ने अर्थ किया अत्यधिक खारा है। जो कुछ भी हो हम तो यही कहेंगे कि ये तीनों चीज स्निग्ध का विरोधी हैं, इसलिए ये तीन का प्रयोग षोडशोपचार पूजा में आप लोग कभी लघु रुद्र आदि करते हो, श्रावण महीना आने वाला है तो वहां पंडित लोग षोडशोपचार के पूजा में घृत का प्रयोग करने के बाद दही का प्रयोग करते हैं, दही के बाद लास्ट में शर्करा का प्रयोग करके फिर शर्करा स्नान कराने के बाद शुद्ध दत्त से स्नान कराते हैं। तो ये सब कहने का अभिप्राय क्या है, यदा स्तम तन्न दिवान रात्रि न सन्न च सचिव एव केवला तदा न सत न असत। उस समय सत भी नहीं रहता है असत भी नहीं रहता है, यहां सत शब्द का अर्थ होता है कार्य वर्ग, व्याकृत पदार्थ, व्यक्त पदार्थ, जैसे तेल, जैसे मक्खन, जैसे घड़ा, ये सब क्या है, व्यक्त है, व्याकृत है, ये सत है, क्योंकि व्यवहार का कारण होने के कारण इनको व्यावहारिक सत माना जाता है, इसलिए श्रुति ने व्यवहार का ही अनुवाद करके ये तदा सद न, यानी ये व्यक्त जगत नहीं रहता है, सत नहीं रहता है तो फिर क्या रहता है, असत रहता है। बोले तदा असत अपि न, यानी अव्याकृत भी नहीं रहता है। अव्याकृत माने कारण के रूप में भी कुछ नहीं रहता, न कार्य रहता है न कारण रहता है, न तेल रहता है न तील रहता है। तेल नहीं है और तील है तो क्या है? सत तो नहीं है लेकिन असत है। ये भाषा से हाँ आप समझ रहे हैं, आपको भ्रांति नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम दो तीन बार इसको स्पष्ट कर रहे हैं। श्रुति जिस समय लौकिक भाषा का प्रयोग करके अनुवाद करती है, लोकानुवाद करती है, तो सत शब्द का अर्थ कार्य जगत यानी व्यवहार का साधन, व्यवहार का भूत साधन। असत शब्द का अर्थ कारण यानी अनभिव्यक्त, जो व्यक्त नहीं हुआ है वह कारण वर्ग हमने स्पष्ट व्याख्या कर दी है। सत का अर्थ तेल, असत का अर्थ तील। सत का अर्थ मक्खन, असत का अर्थ दही। सत का अर्थ घाट, असत का अर्थ मिट्टी। ये दोनों चीज नहीं रहते। कब नहीं रहते हैं? जब यदा न तम, जहां तम नहीं रहता है वह दिन भी नहीं रहता, रात्रि भी नहीं रहता, क्योंकि दिन कार्य पदार्थों के साथ व्यवहार करने की अवस्था है, रात्रि कारण के साथ व्यवहार करने की अवस्था है। यानी जागृत अवस्था में आप कार्य वर्गों से परिचित होकर तमाम कार्य वर्ग से व्यवहार करते हो, और सुषुप्ति अवस्था में आप कारण वर्ग से परिचित होकर उस कारण के साथ तादात्म्य करके बैठते हो। जिस समय मूल अविद्या नहीं रहता है तो न जागृत रहता है न सुषुप्ति रहती है, कार्य वर्ग जागृत भी नहीं रहता है और कारण वर्ग सुषुप्ति भी नहीं रहता है, और आदि और अंत दोनों नहीं रहते हैं, तो मध्य का स्वप्न भी स्वतः नहीं रहता। इसलिए श्रुति ने मध्य के स्वप्न को स्वतंत्र रूप से खंडन नहीं किया, क्योंकि आदौ अन्य अंते च यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, ये नियम श्रुति को याद है। इसीलिए पहले का कारण का निषेध करते ही कार्य का निषेध हो जाता है, जागृत और सुषुप्ति का निषेध कर देने पर जागृत सुषुप्ति के बीच का जो स्वप्न है वह स्वतः निषिद्ध हो जाने के कारण यहां सूक्ष्म स्वप्न का अलग निषेध करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसी प्रकार से यदा न सन्न चा सच्चिव एव केवल, सत न माने तमाम कार्य वर्ग नहीं है कहते हैं, असत न माने मूल कारण वर्ग नहीं है कहते हैं, तो बीच में जो प्रकृति विकृति है कार्य और कारण है, जो अपने सांख्यों के संस्कारों से सात पदार्थों को प्रकृति विकृति उभय धर्मात्मक माना गया था, ये स्वतः प्रकृति और विकृति दोनों का निषेध कर देने के कारण विकृति माने सत, प्रकृति माने असत यानी कारण, ये दोनों का निषेध कर देने के कारण बीच के जो सात पदार्थ हैं प्रकृति विकृति वह स्वतः निषिद्ध हो जाते हैं, इसलिए उसको स्वतंत्र रूप से निषेध करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यदा तमस्तन्न दिवान रात्रिर न सन्न चा सत, फिर क्या है महाराज? सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, तब फिर शून्य है? तो श्रुति कहती है कि नहीं, शून्य नहीं है, फिर क्या है महाराज? शिव एव केवल, शिव एव केवल। उस समय में केवल शिव रहता है, वह शिव कारण भी नहीं है, वह शिव कार्य भी नहीं है, वह केवल जो शिव है, इसी को शोधित तत्पद का अर्थ बताया गया है। शिव अर्थात निस्त्रैर्गुण्य प्रवासी पदे निस्त्रैर्गुण्य शिवाय नमः, तीनों गुण का गुण से असंग जो तत्व है उसको शिव कहा। शिव एव केवल, ये तीन चीज आ गया है। क्या रहता है उस समय? तो शिव रहता है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, शिव शब्द का अर्थ होता है आनंद, शिव शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म, शिव शब्द का अर्थ होता है सुख, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, क्योंकि सुख ही कल्याण है, कल्याण ही सुख है, क्योंकि सुख कल्याण ही आनंद है, और आनंद ही सुख कल्याण है, इसलिए आनंद ही शिव है, शिव ही आनंद है। मंडूक उपनिषद में आया है, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सविज्ञेयः। जो शांत है, जो शिव है, जो चतुर्थ है, शांतम शिवम चतुर्थम, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। शिव एव पद से क्या किया, वहां श्रुति में मुंडक उपनिषद के श्रुति में जिस शिव के लिए अद्वैत कहा है उसी को यहां एव पद के द्वारा व्याख्या कर दे। शिव एव, एव पद अन्य विकल्प व्यावर्तक है। कोई यह न समझे कि शिव के साथ माया रहती हो, कोई यह न समझे, इसके लिए कहा कि शिव एव, उस समय माया भी नहीं रहती है। कोई कहे कि शिव के साथ पार्वती रहती हो, तो उस समय पार्वती भी नहीं रहती है। कोई कहे कि शिव के साथ शक्ति रहती है, उस समय शक्ति भी नहीं रहती है। जिस समय, ध्यान से सुन लेना आप, वेदांत की प्रक्रिया है, जिस समय शिव से शक्ति युक्त होकर शक्ति भी रहती है, शिव के साथ शक्ति भी रहती है, तो उस समय में असत रहता है। वेदांत की भाषा से असत रहता है माने सबका कारण के रूप में रहता है। और केवल शिव रहते हैं तो उस समय में असत नहीं रहता, यानी कारण नहीं रहता है। उपाधि रहित, शक्ति से रहित जो शिव है उसमें कारणता नहीं रहता, और जब कारणता ही उसमें नहीं है तो कार्यता के तो कब सवाल ही नहीं है। कारणता रहने के लिए उस शिव के साथ क्या रहना पड़ता है, शक्ति को रहना पड़ता है। कारणता रहने के लिए उस शिव के साथ माया को रहना पड़ता है। अपने इससे पहले के मंत्र पढ़ चुके हो श्वेता सूत्र उपनिषद के, मायाम तो प्रकृतिम विद्धि माइनम तो महेश्वरम। वहां महेश्वर को जो माई कहा, माइनम तो महेश्वरम, इसका मतलब वह कारण ब्रह्म के रूप में वहां प्रतिपादन किया है महेश्वर को। माइनम तो महेश्वरम, माया विशिष्ट जो चैतन्य है वह महेश्वर है, वो महेश्वर ही तस्या अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदम जगत। वह महेश्वर के ही अवयव के रूप में ये सारा का सारा जगत व्याप्त हुआ है, क्योंकि कारण ही कार्य में व्याप्त रहता है। तो वहां जो महेश्वर को बताया गया है वह शक्ति से युक्त शिव है, और यहां शिवैव केवल जो कहा जा रहा है शक्ति से रहित शिव है। शक्ति से रहित शिव अस्तित्व वाला तो रहता है, चार चीज रहते हैं शक्ति से रहित शिव में, पांचवां चीज नहीं रहता। शक्ति से रहित शिव में चार चीज कौन रहते हैं, सत्य वस्तु रहता है, सत्य शांत वस्तु, सत्यम शिवम अनंतम अद्वैतम। सत्य यानी सत्ता अस्तित्व, ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान माने चैतन्यता, अनंतता माने आनंद रूपता। ये तीन वस्तु शक्ति से रहित शिव में तीन वस्तु रहते हैं, और चौथा वस्तु है अद्वितीयता। और जहां वही ये चार धर्म चार वस्तुओं से युक्त जो शिव है उसके साथ जब शक्ति का संबंध हो जाता है तब वह महेश्वर कहलाता है, तब वह कारण ब्रह्म कहलाता है, फिर उसी से सारा जगत एको हम बहुश्याम प्रजाया ये संकल्प होता है, और ये संकल्प के माध्यम से सारा जगत उत्पन्न होता है। उस समय जो एक से अनेक होने का जो संकल्प करता है वह माया वृत्ति से संकल्प करता है। महेश्वर एक से अनेक होने का जो संकल्प करता है, ईश्वर एक से अनेक होने का जो संकल्प करता है वह संकल्प माया वृत्ति से करता है। जैसे हम संकल्प करते हैं तो हम अंतःकरण की वृत्ति से संकल्प करते हैं, ईश्वर संकल्प करता है तो माया वृत्ति से संकल्प करता है। जैसे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी अकेला है और वो ये इच्छा करता है कि मैं शादी करूं तो घर गृहस्थ बसाऊं, ये जो संकल्प करके शादी करने की तैयारी करता है, वह जो संकल्प करता है वह अंतःकरण की वृत्ति से मनोवृत्ति से संकल्प करता है। लेकिन ईश्वर जो संकल्प करता है उस समय में मनोवृत्ति से संकल्प नहीं करता है, वह माया वृत्ति से संकल्प करता है, क्योंकि मन उपाधि जीवात्मा का है, माया उपाधि ईश्वर का है। कार्य उपाधि रयम जीव, कारणोपाधि ईश्वर है। जीव और ईश्वर में अंतर क्या है? संकल्प करना, एक से अनेक होने का संकल्प करने की क्षमता जीव में भी है, एक से अनेक होने की संकल्प करने की क्षमता ईश्वर में भी है, ईश्वर में भी जीव में भी दोनों में संकल्प करने की क्षमता है। तो फिर दोनों को अलग क्यों मानते हो? क्योंकि जीव में अंतःकरण की वृत्ति से संकल्प करने की क्षमता है, अंतःकरण परिच्छिन्न होने के कारण जीवात्मा जो संकल्प करता है वह अल्प संकल्प करता है, परिच्छिन्न संकल्प करता है। ईश्वर की उपाधि माया परिच्छिन्न न होने के कारण, वह व्यापक होने के कारण उस माया वृत्ति से जो ईश्वर संकल्प करता है वह संकल्प जीव के संकल्प से महान संकल्प होगा, इस जीव के संकल्प से व्यापक संकल्प होगा। यही अंतर है। यदा तमस्तन्न दिवानरात्रिर् न सन्न चासच्चिव एव केवला। शिव एव केवला, केवल शब्द का अर्थ भी एक है, यव शब्द का अर्थ भी एक ही है, तो फिर शिव एव कह देते फिर केवल क्यों कहा? तो सजातीय विजातीय सुखद भेद, तीन प्रकार के भेद की संभावना को निषेध करने के लिए, हाँ, इस प्रकार से केवल और एव ये पद प्रयोग कर दिया गया है। तदक्षरम, वो शिव क्या है? उस शिव को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर का शब्द का अर्थ होता है यहां यौगिक अर्थ लेना। अक्षर शब्द का यौगिक अर्थ क्या है? न अक्षरति इति अक्षरः। वो जो केवल शिव तत्व है वो अक्षर है, यानी वो कभी भी क्षरित नहीं होता, न घटता है न बढ़ता है, न घटता है न बढ़ता है। कोई वस्तु है और उसका ज्यादा व्यक्ति उसका प्रयोग करने लग जाएंगे तो घटने लग जाएगा, है ना? जैसे किसी के घर में 1000 लीटर का पानी का टंकी है, अब उसको यदि कोई व्यक्ति प्रयोग करने लग जाए ज्यादा तो फिर वो जल्दी से घट जाएगा। घटना क्या, एक दिन समाप्त ही हो जाएगा, है? और यदि प्रयोग नहीं करोगे तो वह जैसा का वैसा रहेगा। कब तक रहेगा जैसा का वैसा? भी 1000 लीटर पानी का टंकी को पूरा भर के ताला लगाकर छत में रखकर आप 1 साल के लिए हरिद्वार जाओ, जाओगे तो नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं 1 साल के लिए हरिद्वार जाओ, वापस आओ तो कितना पानी रहेगा उसमें? 1000 लीटर रहेगा? जाएगा, कहां से गया कहां से गया। यही तो चरण है, यही तो चरण है। इसलिए तो किसी नीतिकार ने कहा लक्ष्मी के बारे में, लक्ष्मी बड़ा विचित्र है, जब वह खुश होती है और आना होता है तो कहीं से भी रास्ता बनाकर आ जाती है, उसके आने के लिए सारे दरवाजा बंद कर दो तो भी वो आ जाती है, वो खुश होती है। और वो नाराज हो जाती है तब वह ऐसे जाती है, जाने के सारे रास्ते बंद कर दो तो भी निकल के चली जाती है। नीतिकारों ने कहा है लक्ष्मी के बारे में, समायाति यथा लक्ष्मी नारिकेल जलाम्बुवत। लक्ष्मी जब प्रसन्न होती है और किसी के यहां जाने की उसके संकल्प हो जाता है तो इस तरह आ जाती है कि उसके आने का कोई रास्ता नहीं हो तो भी आ जाती है। कैसे बोले, नारिकेल जलाम्बुवत, नारियल में आप यदि जल भरना चाहो तो कहीं किसी छिद्र से भर सकते हो, आप भर सकते हो, बोलो कोई रास्ता है आपको जल भरने का? वहां कोई रास्ता नहीं, एक बूंद पानी जा नहीं सकता है, लेकिन कोई छिद्र न होने पर भी अंदर पूरा का पूरा पानी भरा रहता है कि नहीं, बोलो? वो पानी कहां से घुसा खोजो तो कोई छिद्र नहीं मिलने वाला। इसी तरह लक्ष्मी जब प्रसन्न हो जाती है तो कहां से आई ये किसी को पता नहीं है। लक्ष्मी मित्तल कहां से आई, कहां से आई, जिधर से भी आ रही है, फ्लो हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। और जब लक्ष्मी नाराज हो जाती है, प्रतियाति समा यथा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्थवत, तो इस तरह चली जाती है वह लक्ष्मी कि कहां से गई उसके जाने का रास्ता खोजो, कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन वो सब कुछ खाली हो जाता है। कैसे बोले, हाथी के द्वारा खाया गया कैथ का फल, कपित्थ फल माने कैथ फल, कपित्थ जम्बू फल चारु वक्षण में आप लोग कहते हो ना गणेश के स्तुति में, जम्मू तो जामन फल के लिए कहते हैं, कपित्थ किसको कहते हैं, आपने देखा है कभी कपित्थ? कपित्थ एक फल विशेष है, वह अंदर जैसे आपका बेल का फल है उसी तरह का होता है, लेकिन बेल नहीं है, बेल के फल की तरह ही होता है, लगभग उतने उतने ही, छोटा बेल, बड़ा बेल नहीं, छोटा बेल जैसे लोकल जंगली बेल की तरह होता है। बेल के पत्ते में तीन पात होते हैं, लेकिन कैथ के पत्ते बहुत इमली के पत्ते की तरह झीणे पत्ते होते हैं, बहुत महीन पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, लेकिन फल का आकार इतना इतने 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 ही होता है। हाथी उसको सीधा का सीधा निगलता है, सीधा का सीधा वो सूंड से पकड़ लेगा, क्योंकि वो चबाएगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो उसका कवर है बेल का जैसे ही ठोस कवर होता है, पके हुए नारियल के बाहर का जो कवर है उसी तरह ठोस होता है, लेकिन हाथी उसको पूरा को पूरा निगल लेता है। और हाथी की पाचन क्रिया इतना तीव्र है कि उसके अंदर जैसे बेल के अंदर गुदी रहती है उसी तरह कपित्थ के अंदर भी गुदी रहती है, और वह वहां से निकल के चला जाता है। सुबह जब हाथी उसका टॉयलेट करता है, विसर्जन करता है, तो केवल उसके छिलके छिलके निकलते, उसके अंदर का तत्व निकल के गया होता है, पच गया होता है। अब ये अंदर का जो गुदी कहां से निकला, कोई छिद्र खोजो तो कहीं छिद्र नहीं मिलने वाला, लेकिन निकल के चला जाता है। ये नीतिकारों ने कहा है लक्ष्मी जो है इतनी चंचल है, हाँ, समायाति यथा लक्ष्मी नारिकेल जलाम्बुवत, प्रतियाति यथा लक्ष्मी गजभुक्त कपित्थवत, यास्त्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेशु, और यास्त्री सुकृतिनाम भवनेशु लक्ष्मी अलक्ष्मी अकृतधियाम, जो दुष्ट हैं उनके घर में तुम अलक्ष्मी बनकर जाती हो, और सुकृतो हैं दुष्कृतों के यहां अलक्ष्मी, सुकृतियों कहां श्री, स्वयं श्री बनकर बैठती हो सुकृति को है, और दुष्कृतियों कहां अलक्ष्मी बनकर चली जाती हो। तो वही जब वो नाराज हो जाती है अलक्ष्मी बनती है, और प्रसन्न होती है तो श्री होती है, उसी को कहते हैं कि वह अक्षर है, तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, वह जो अक्षर है शिवा है वह सवितुः वरेण्यम, सविता द्वारा भी वरेण्य है, सवितुर्वरेण्यम इसका अर्थ नहीं करना, वही सवितु है वही वरेण्य है, ऐसा नहीं, उसको सवितु और वरेण्य कहोगे तो वह फिर सोपाधिक होगा, वह फिर वाच्यार्थ होगा, इसको और स्पष्ट कल करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।